नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
मैं दीपक आज आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा और मिड डे मील योजना की स्थिति क्या है। एक तरफ जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले एक छवि हमारे जहन में बनती है कि किसी भी समाज और व्यवस्था की बुनियादी होती है वहाँ की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, जो बच्चों के सपनों को उड़ान देती है। इस संबंध में अगर दंतेवाड़ा को देखें तो यहाँ मूलतः चार आदिवासी समुदाय रहते हैं, गोंड, हल्बी, मुरिया और माड़िया। ये समुदाय सदियों से जंगल में रहते आए हैं। इनकी भाषा गोंडी और हल्बी द्रविड़ परिवार की भाषा से पुरानी है, हालांकि इनका कोई व्याकरण नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब शिक्षकों को गोंडी और हल्बी नहीं आती तो शिक्षक उनसे बात कैसे करते हैं। इस संबंध पर शिक्षकों ने कहा कि जैसे तैसे काम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनकी भाषा समझने की। किसी बच्चे को ही पकड़ते हैं जो बाकी बच्चों को हमारी बात बता पाए। यहाँ के एक अन्य शिक्षक खुमान सिंह सोरी ने बताया कि उनसे बात करने में समस्या हो रही है, पर आदिवासियों की बोली सीखने की कोशिश जारी है। जब बच्चों की बात नहीं समझ रहे हैं तो शिक्षा मिल रही होगी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही मिड डे मील योजना की भी इस आदिवासी इलाके में बुरा हाल है। स्कूल के शिक्षकों के अनुसार योजना के तहत हर बच्चों को रोजाना राशन का 4.58 पैसे और गैस का 20 पैसा आता है। गतपाल तहसील के मिसोपारा गांव स्थित राजकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक अनिरुद्ध बेखला ने बताया कि बच्चों का भोजन पकाने के लिए सरकार द्वारा गैस का पैसा देकर धुआं मुक्त स्कूल को इनाम मिल गया, लेकिन स्कूल में क्या हुआ इससे किसी को कोई मतलब नहीं। उसी स्कूल के एक और शिक्षक खुमान सिंह सोरी ने बताया कि यहां मिड डे मील की स्थिति बहुत ही बुरी है, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। बच्चे स्कूल में कम आते हैं, अब हम खाना कैसे खिलाएं, जबकि यहाँ बच्चे की खुराक भी ज्यादा है क्योंकि उनको और कुछ खाने को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि यहाँ अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में 10-15 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, उनमें से उपस्थिति मुश्किल से 4-5 की होती है, क्योंकि सरकारी योजना के अनुसार इन बच्चों के लिए 40 पैसे की गैस और 9.16 रुपए मिलता है, इतने में खाना कैसे बनेगा। दंतेवाड़ा के कुम्हाररास स्थित मिडिल स्कूल के दो भाग हैं, प्राथमिक और मिडिल। ये जो स्कूल दंतेवाड़ा शहर से मात्र 6 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ सहायक शिक्षक के तौर पर तैनात सरोजनी सिन्हा बताती हैं कि हमारे यहाँ 40-50 बच्चे नामांकित हैं, इनमें से जैसे तैसे करके हम तकरीबन 20 बच्चों को ही स्कूल ला पाते हैं।
मैं मधु खबरें लेकर आई हूँ उद्योग के विकास के लिए खेती की बलि दी जा रही है। इस संबंध में किसी ध्येय अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ बलिदान देने की आवश्यकता होती है। अगर आपका उद्देश्य उद्योग को बढ़ावा देना है तो आपको कृषि का बलिदान देना होगा। जब से 1991 में आर्थिक सुधारों को शुरू किया गया था, तभी से अनुवर्ती सरकारें यही करती आई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उद्योग को बढ़ाने के लिए कृषि का बलिदान दिया गया है। कृषि की भूमिका उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने, रियल इस्टेट और अवस्थापना सहित उद्योग के लिए भूमि उपलब्ध कराने और उद्योग के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराने तक सिमट गई है। फसल उगाने के प्रत्येक मौसम में कृषि लागत और मूल्य आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें फसलों के न्यूनतम लागत मूल्य की गणना की जाती है। कई वर्षों से वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कपास किसानों को वैश्विक बाजार कीमतों से 20% कम भुगतान किया जा रहा था, यही नीति अब भी जारी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वस्त्र उद्योग को व्यवहार्य रखने के लिए कपास किसानों को 20% कम भुगतान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कपास की कीमत कम होने का कारण है अमेरिका द्वारा अपने कपास किसानों को दी जाने वाली वृहद सब्सिडी। अमेरिकी सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में गिरावट लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पश्चिमी अफ्रीका के किसान अयोग्य उत्पादक प्रतीत होते हैं। इसके बाद सस्ते और बड़े स्तर पर सब्सिडी प्राप्त वस्त्र भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों द्वारा आयात किए जाते हैं। भारत को देखें तो वास्तव में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों में 70% मामले कपास किसानों के होते हैं। ये किसान एक सोची समझी नीति के शिकार हैं, जिन्हें उनको उचित आय प्राप्त करने से रोका जाता है ताकि वस्त्र उद्योग फल फूल सके। किसानों की औद्योगिक विकास की वेदी पर बलि दी जा रही है। प्रत्येक वर्ष तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य वास्तव में खेती के उत्पादन मूल्य से कम होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग इस बात को मानता है, परंतु उसकी भूमिका किसानों को भुगतान की कीमतों और उपभोक्ताओं के लिए बाजार मूल्य के बीच संतुलन बनाना है।
दोस्तों, मैं हूं किशन और आज मैं आपको बताऊंगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के विभिन्न योजनाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से आज हम खबरें छरा हटके में आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की दास्ता। ये सफलता की कहानी राह दिखाएगी उन महिलाओं को जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है और आगे बढ़ने के लिए राह तलाश रही है। जैसे कि असम राज्य में चलाए जा रहे ग्राम विकास संस्थानों में लोगों को हुनर सीखने का जरिया तो दिया ही है, साथ ही साथ इस संस्थाओं के अधिकारी गांव-गांव में जाकर ग्रामीण युवतियों को संस्थान में प्रशिक्षण के लिए प्रेरित भी करते हैं। ये इन्हीं की कोशिशों का परिणाम है कि आज यहाँ की ग्रामीण महिलाएं न केवल सजग हैं, बल्कि पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़कर विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षण भी हासिल कर रही है। ये महिलाओं में आए बदलाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके साथ ही गुवाहाटी के कई संस्थानों में भी यह प्रक्रिया चालू है, जिससे महिलाओं को आय निश्चित रूप से मिल पा रही है। संस्थाओं में महिलाओं को कपड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया भी सिखाई जाती है तथा महिलाओं द्वारा मेले आदि जगहों पर प्रदर्शन भी करते हैं। अब बात आती है महात्मा गांधी नरेगा योजना की। इस योजना के तहत सुनिश्चित किया जाता है कि अकुशल काम की इच्छा रखने वाले हर गांव कार्ड धारक ग्रामीण को गारंटी के साथ काम दिया जाए, साथ ही नियम के मुताबिक मजदूरी का भुगतान भी किया जाए। जॉब कार्ड मिलते ही साल में कम से कम 100 दिन का काम मिल सकता है। महात्मा गांधी नरेगा के शुरुआती वर्षों में सामुदायिक प्रयोग के भूमि पर कार्य किए गए थे। अब बात होगी इंदिरा आवास योजना की, जहाँ पर खुर्द गाँव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम चंद्रकला है, जिसके पास रहने के लिए मिट्टी की झोपड़ी का मकान था, जिससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसका कारण था कि इससे इंदिरा आवास मुहैया नहीं कराया गया था, साथ ही इनका बीपीएल नंबर भी नहीं आया था, लेकिन सूचना पर आधार पर उन्हें ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है। उनके चेहरे में मुस्कान झलकती नजर आती है, उनका सपना पूरा हो चुका है। इंदिरा आवास के योजना से उसने खुद अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपना घर बनाकर पूरा किया, फिर 7 महीने में उसका अपना पक्का मकान बनकर तैयार हो गया है। इस योजना के तहत गरीबी नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा आवास मुहैया कराया जाता है। यह एक ऐसी योजना है जो बीपीएल परिवारों में अपना घर होने की उम्मीद जगाती है।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।